आर्ट ऑफ लविंग सीरीज चल रहा है आज यज्ञ हाउ टू लव यज्ञ कैसे यज्ञ से प्यार करें उसके बारे में हम देखेंगे। अभी पिछले सीरीज में आत्मा से प्यार खुद से स्वयं से प्यार कैसे करें फिर भगवान से प्यार कैसे करें और आज यज्ञ से प्यार कैसे करें ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि यज्ञ होता क्या है एक्चुअली परमात्मा ने आकर यज्ञ क्यों कहा। तो थोड़ा कुछ जो बाहरी दुनिया में कहते हैं वो जानेंगे और फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। तो यज्ञ का मतलब जो मीनिंग बताते हैं वो कहते हैं कि सेक्रीफाइस मतलब त्याग बलिदान और ऑब्लेशन भी कहते हैं न्योछावर होना मतलब यज्ञ मतलब अपने आप को समर्पित कर देना, स्वाहा कर देना। फिर तीन और उसके अर्थ बताए हैं, देव पूजा, पूजा और दान और संगतिकरण। संगतिकरण अर्थात संगठन। तो पूजा अर्थात हम उसको अगर कंपेयर करेंगे तो पूजा अर्थात परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा को याद करना। और दूसरा है दान, जो परमात्मा ज्ञान हमको सुनाते हैं उस ज्ञान का दान करना। और तीसरा है संगतिकरण अर्थात संगठन। तो सबसे पहले यज्ञ में संगठन जरूरी है, बिना संगठन का यज्ञ नहीं होता है। ये तीन अर्थ है। फिर कुछ तात्पर्य बताए हैं, जैसे जो यज्ञ होता है उसमें क्या करते हैं, जो बाहरी दुनिया में यज्ञ होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या करते हैं? आहुति करते हैं और मंत्र। तो हम देखते हैं हवन, हवन कुंड जैसा बनाते हैं, उसमें फिर कुछ हवन सामग्री उसमें डालते हैं, फिर घी डालते हैं। तो उसमें हवन, उसका भी साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि वो हवन जो होता है उससे जो धुआं निकलता है उससे भी हवा का शुद्धिकरण होता है। कहते हैं कि हवन द्वारा हवा का शुद्धिकरण। और जो मंत्र जाप होता है, मंत्र में भी बहुत उसका जो वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होता है, तो मंत्र उसमें कंटिन्यू मंत्र जाप करते हैं, तो कहते हैं मंत्र द्वारा ध्वनि का शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण प्रोसेस है। और यज्ञ की विधि जो होती है, एक यज्ञ में क्या होता है, अग्नि, अग्नि का बहुत महत्व यज्ञ में, अग्नि का। और अग्नि को पावक भी कहते हैं। और पावक क्या करता है कि पावक शुद्ध करता है, अग्नि में कुछ भी डालो तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। फिर अग्नि में हम क्या डालते हैं, घी डालते हैं नॉर्मली अग्नि को और प्रज्वलित करने के लिए। और घी को अग्नि क्या करता है, और प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। तो घी क्या है, घी कैसे बनता है, घी बनता है दूध से पूरा। तो परमात्मा का जो ज्ञान है, बाबा का जो ज्ञान है, वो देखा जाए तो दूध है। उस पर जब मनन चिंतन मंथन करते हैं तो उसको घी में बदलते हैं, क्योंकि दूध में कैसे दही बनता है, पहले दही से मक्खन, मक्खन से घी। तो दूध में जब हम क्या पुराना दही डालते, पुराना मतलब हमारे जो पहले के ज्ञान है थोड़े बहुत, उसको जब हम कंपेयर करते हैं, बाबा भी जब मुरली सुनाते हैं तो उसमें ज्ञान का कंपेयर करते हैं, वो जब हम डालते हैं तो दही बनता है, मतलब ज्ञान में थोड़ा सा अपना मिक्स किया हमने। फिर उसको फिर और मंथन किया हमने, चिंतन किया, तो उससे फिर मक्खन बना। और उस मक्खन को जब हम और प्रोसेस करेंगे तो घी बनेगा। और उस घी को अग्नि में अर्थात योग में प्रयोग करेंगे हम, ज्ञान सुने मुरली डायरेक्ट, उसको जब मनन चिंतन मंथन करके उसको जब हम योग में प्रयोग करेंगे तो प्रकाश मतलब हमारी आत्मा की प्रकाश जग जाएगी। तो जो यज्ञ है बाहरी दुनिया का, उसका ये एक तात्पर्य है। और यज्ञ का एक और बहुत अर्थ होता है देना, उसमें देने का भाव रहता है, कल्याण का भाव रहता है, किसी प्रयोजन से बनता है, विश्व कल्याण का भाव हो या फिर देने का भाव रहता है। तो जैसे देखा जाए कि जो नेचर का साइकिल होता है, बाबा ने मुरली में कहते हैं कि नदियां कहाँ से आती हैं, समुद्र से, तुम सभी नदियां हो समुद्र से आते हो। तो उसका एक प्रोसेस भी है कि समुद्र से भाप बन के बादल में जाता है पानी, फिर वो बारिश होता है तो पहाड़ों पे आता है, और पहाड़ों से फिर नदी बन के, और नदी भी ये देते रहते हैं, मतलब नदी जब पहाड़ से आते हैं, कोई भी गंगा नदी यमुना, वो सभी क्या करते हैं, उसी से खेती करते हैं हम, पानी पीने का प्रयोग होता है, पूरा जितना भी जाते हैं सब जगह यूज होता है, और वो लास्ट में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। तो हमारा भी क्या है कि इनको देते जाना है और बाद में जाकर परमात्मा सागर में मिल जाना है। तो ये रही बाहर की बातें, अभी कुछ हम अपने पॉइंट्स पे आएंगे कि हमारा जो यज्ञ है, परमात्मा ने आकर जो रचा है, उसका कौन कौन रचा है, वो रचने वाला कौन है, फिर उसके बारे में कुछ जानेंगे ताकि हम उससे कैसे और नजदीक आ सके, यज्ञ को समझें और यज्ञ से कैसे प्यार बढ़ाएं, ये जानेंगे। तो सबसे पहले यज्ञ का रचयिता कौन है, इसको रचने वाला कौन है, कोई इंसान है, कौन है, कोई देवता है, निराकार परमात्मा है, शिव बाबा है। और जैसे बाहर में क्या कहते हैं कि भगवान बहुतों को मानते हैं, लेकिन एक वही है, बस वही है। आज की मुरली में बाबा ने एक एक बहुत बार कहा है, 9 बार, आज 9 तारीख भी है और 9 बार एक एक कहा है। तो एक ही है, तो परमात्मा है, उसने ये यज्ञ रचा है। और उस यज्ञ में हम सभी यज्ञवत्स, पहले यज्ञवत्स कहते थे, तो हम यज्ञवत्स हैं। और उसका नाम क्या दिया, यज्ञ का नाम क्या दिया, और कोई नाम दिया, रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक बुक है बाबा की, उसमें मैंने देखा राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। उसमें अश्वमेघ क्यों कहा, क्योंकि मन रूपी अश्व को वश में करने के लिए, और जो ज्ञान है वो तो अविनाशी है, और इस ज्ञान से ही हमारी सदगति होती है। तो बाबा ने इसमें है, मन रूपी अश्व को ज्ञानाग्नि में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करना, इसका मतलब बताया है ये जो नाम बाबा ने दिया है उसका। फिर दूसरा है यज्ञ का इतिहास, क्योंकि किसी भी चीज से अगर हमको जानना, प्यार करना है तो उसके बारे में तो जानना होगा ना, तभी तो हम, जब जानेंगे ही नहीं तो कैसे उसको कुछ पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जाना कि रचयिता कौन है, जिसको सब, कोई भी है, भले वो कोई नास्तिक भी होगा ना, उसको भी भगवान से प्यार रहता ही है कहीं ना कहीं। एक स्टोरी बताया था भाई जी ने, सचिन भाई जी ने, कि एक था, उसने किसी से ऐसे किया, बहस किया कि भगवान को नहीं, प्रूफ किया, और जब प्रूफ हो गया तो बोला कि ओ थैंक गॉड प्रूफ हो गया, तो अल्टीमेटली उसने भगवान को याद किया। तो चीजें हैं, तो जब हमको ये पता पड़ता है कि ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, तो ऑटोमेटिक स्वतः ही एक अट्रैक्शन आ जाता है। अट्रैक्शन तो आ गया, लेकिन उसके बाद उसके बारे में तो जानेंगे, क्योंकि हाँ चलो ठीक है भगवान ने बनाया समझा, लेकिन उस पर विश्वास कैसे, इतना जल्दी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि कई जन्मों की प्यास थी, कई जन्मों से भगवान को ढूंढ रहे थे, और अचानक से ऐसे कोई बोल दे भगवान ने रचा है, भगवान आ गए हैं, तो विश्वास होता ही नहीं है। हो भी जाए तो भी अंदर तक अंदर नहीं बैठता है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर ज्ञान समझ में आएगा, स्वीकार कर ले, लेकिन अंदर की महसूसता नहीं होती है। उसके लिए हमको उसके बारे में जितना ज्यादा जानते जाएंगे, तब तो इतिहास जानेंगे कि कैसे हुआ वो, कितना सब कैसे हुआ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा थे तो पहले क्या थे, एक हीरे के व्यापारी थे, और उससे कैसे कितना परिवर्तन आ गया, अच्छा खासा उनका परिवार चल रहा था, उनको क्या पड़ी थी इतना गाली सुनने की, इतना ये सब करने की। कई बोलते हैं ना कि हाँ उनको ज्यादा पैसा था उनके पास, तो यूज करने के लिए अपना कर लिए कि चलो क्या करेंगे बुढ़ापे में, लेकिन इतना जो हुआ प्रॉब्लम, तो उनको क्या पड़ी थी, सोचते आराम से कुछ साल आराम से जिंदगी काटते हैं। तो ऐसे कैसे नहीं, वो उसका मतलब का प्यार नहीं है, प्यार तो हमारा हो जाता है, लेकिन कैसा, जितना हम जैसे किसी, अगर लौकिक में भी देखते हैं कोई किसी से प्यार करता है, उसके बारे में तो जानता है ना, बातें करता है ना, क्योंकि उसके साथ हमको और अट्रैक्ट होना है। या इट इज अनकंडीशनल एक्चुअली, बट अभी हमको क्या करना है कि हमको ये ज्ञान सबको सुनाना है, सबको बताना है, पूरे विश्व को बताना है, और सबका एक जैसा नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं बताओ, सिर्फ बता दो भगवान उसको प्यार हो जाएगा, और किसी को नहीं होगा। तो उसके लिए, और इतना छोटी बात नहीं है कि इतना आसानी से कोई स्वीकार कर लेता है, और सब किसी को ऐसा, पहले स्टार्टिंग में साक्षात्कार हो जाते थे तो एकदम से निछावर हो गए, आजकल तो वो नहीं होता है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे उनको होगा वो चीज, फीलिंग आएगी। किसी किसी को बहुत, किसी किसी को, कल जो भाई बता रहे थे तो बचपन से ज्ञान में थे, और मुरली पढ़ना 2 साल पहले स्टार्ट किया, तो कैसे हुआ, धीरे 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 डालते गए डालते गए डालते गए। तो वो है, तो बोल नहीं सकते, सबका अपना अपना है, और परमात्मा तो सबके है ना, किसी एक के तो नहीं है। अब वो आके इंग्लिश में ज्ञान सुना दे तो हिंदी वाले क्या करेंगे, हिंदी में सुनाता है लेकिन उसके बाकी तो तैयार करता है ना सभी भाषाओं के, तो इसलिए वो सबका है, वो हर किसी को सुनाने के लिए, हर तरह से समझाने के लिए करेगा। तो इसलिए सबके इतिहास भी ऐसा बनाया है कि इतिहास ही अगर देखो तो कितना उसी में इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा आता है। तो ऑफकोर्स इट्स अनकंडीशनल, बट इट शुड बी अनकंडीशनल, बट वो थोड़ा बहुत चाहिए, हर किसी का है अपना अपना है ना। तो वैसा है इतिहास कि कैसे पहले सिंध हैदराबाद में बाबा थे, फिर वहां पे उनको साक्षात्कार हुए, अनुभव हुए बहुत सारे, फिर बनारस गए, वहां पे बनारस में एक्चुअली साक्षात्कार हुए थे विनाश के, हाँ, फिर वहां पे वो कुछ चित्र निकालते थे, फिर वैसे धीरे धीरे फिर उन्होंने बिजनेस के अपना बंद किया, और अपने साथी जो थे उनको हैंड ओवर करके, और फिर वो हैदराबाद आ गए, और वहां से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, फिर कराची गए, कराची से फिर कैसे इंडिया आए। तो वो पूरा जो इतिहास है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा उस शक्ति है एक, और उस समय कैसे बाकी जो आए ज्ञान में एकदम से आ गए, क्योंकि उस समय तो उनको साक्षात्कार भी हो जाते थे, बाबा को देखते ही जैसे एकदम डूब जाते थे, मम्मा आए, दादी आए, वो लोगों ने एकदम। तो फिर तीसरा है अनुभव। अनुभव से भी हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि कैसा है, जिनने ज्यादा बाबा के, जितना ज्यादा करीब बाबा के साथ रहे, उनके जब हम अनुभव सुनते हैं तो उससे भी हमको यज्ञ से एक स्नेह जुड़ता है, कि यज्ञ में जितने भी आए हैं कहीं उनको भगवान से कितना प्यार है, भले कुछ भी हो लेकिन भगवान से प्यार है तभी यहाँ पे आए हैं, उसके बिना यहाँ यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता है। तो अनुभव जब हम सुनते हैं, जैसे दादियों के अनुभव हैं, दादी हृदय पुष्पाज का अनुभव था कि उनकी शादी का मन नहीं था उनको, लेकिन उनकी शादी हुई, बट वो लकी थे कि उनके जो युगल थे वो मतलब बहुत शांत स्वभाव के थे, उनमें कुछ काम वासना वगैरह कुछ नहीं था, बहुत ही मतलब भक्ति भाव के थे, लेकिन बीमार रहते थे वो, और दादी ने उनका नर्स की तरह उनकी पालना दी, और लेकिन 6 मंथ बाद ही उनका उन्हें शरीर छोड़ दिया, और उनके जो लौकिक भाई थे उनने भी शरीर छोड़ दिया था, तो उनके घर में एकदम दुख का मतलब बहुत ज्यादा था, लेकिन और वो काफी पैसे वाले थे, तो उन्हें बाबा ने भी सुना था, फिर ओम मंडली का भी तब बहुत चल रहा था, तो दादी जब आए यहाँ पे बाबा के सामने तो बाबा ने पूछा आप कौन हो, तो उन्हें बोला मैं दुखी हूँ, तो उन्हें बाबा ने कहा कि नहीं आप दुखी नहीं हो, आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप आत्मा हो, और वो सुनते ही जैसे कि वो खो गए, और तुरंत मतलब उनको एक दिन में ही उनको पूरा वो 2 घंटे वो बैठ चले गए ज्ञान में, फिर वैसे धीरे धीरे उनका पूरा परिवार ही ज्ञान में आ गया। तो वैसे सबके अनुभव हैं, सबके अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन सबका जो प्यार है भगवान से, जो सुख मिला है वो एकदम से दुख से सुख तुरंत, जैसे इतना बड़ा जो घटना घटा कि उनका पति भी चला गया, उनका भाई भी चला गया, फैमिली में पूरा दुख है, और एकदम से अचानक से सुख मिल जाना एक शब्द से, अब सुख स्वरूप आत्मा हो, किसी को बोलो तो बोलेगा कि चलो ठीक है निकलो इधर से, हो गया, लेकिन कैसे बाबा ने एक शब्द कहा और उतना में ही सारा दुख खत्म। तो अनुभव से बहुत कुछ मिलता है। फिर है तीसरा प्रभु प्रेम और ईश्वरीय स्नेह। तो प्रभु प्रेम क्या है, पहले जब उन लोग आए थे तब गीत गाते थे खुद से, क्योंकि पहले बहुत फैमिली में बहुत प्रॉब्लम करते थे, तो उस समय यज्ञ की स्थापना हो रही थी, स्थापना के समय तो होता ही है, प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह की बातें आती हैं, तो उस समय गीत गाते थे जो कि था मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मीरा समूह में प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोकलाज त्यागी, मैंने दीदार खातिर लोकलाज त्यागी, मुहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। तो ऐसे गाके और ट्रांस में चले जाते थे, रास करते थे, तो कितना वो प्यारे दिन थे, आज भी प्यारे हैं, कल भी प्यारे थे, तो ऐसे गीत गाते रहते थे, और क्योंकि उधर से प्रॉब्लम होती थी और भगवान के प्यार में इतने मगन थे कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर जगदीश भाई जी भी के भी अनुभव हैं, वो भी सुनाते हैं कि 1969 के टाइम पे उनको उनको एक्चुअली उनको तो पता चल जाता था कई बातें भविष्य की, और उनको ऐसे बाबा ब्रह्मा बाबा का जो ये होने वाला अव्यक्त होने वाले थे उनको पहले से पता चल गया था, तो उन्होंने दादी गुलजार दादी को कहा था कि इस यज्ञ में अभी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो दादी ने पूछा कि क्या क्या बोल रहे हो, क्या आने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि आप खुद ही देखो, खुद ही समझो क्या आने वाला है। फिर दादी को भी तो उनको भी तो टचिंग होती थी, तो उन्होंने भी समझ लिया। फिर उन्होंने बोला मुझे मधुबन जाना है, और मधुबन आए थे तो और बाबा को कैसा समझ में आ गया कि इनको पता चल गया है जगदीश भाई जी को, और ये पता चल गया है और ये सबको बता देगा, हल्ला करेगा, तो बाबा ने उनको बोला कि जाओ जाओ बहुत सेवा बाकी है दिल्ली में, वो बोले कि नहीं मुझे यहाँ रुकना है, कुछ दिन रुकना है। तो बाबा को तो पता था कि क्यों रुकना चाह रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, कौन सी बुक है वो कि वो करनी है, उसका अभी सेवा बाकी है जाओ, बोला कि वो हो जाएगा बाबा कुछ दिन रुकने दो। तो बाबा ने एकदम मतलब उनको भेज दिया। फिर वो जब गए स्टेशन पे तो उनको अंदर से इतना कि मेरे प्रियतम जा रहे हैं और मैं उनको छोड़ के मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो कि मैं चला जा, जिद कर लेता, कुछ भी कर लेता, लेकिन नहीं जाता यहाँ से, रिटर्न चल जाओ। लेकिन क्या था, आज्ञा थी तो जाना पड़ा उनको, तो चले गए। फिर जब बाबा व्यक्त हुए, कॉल गया तो फोन उनके पास में ही था, लेकिन फोन वो पिक नहीं किए, दादी ने फोन पिक किया। तो ऐसे प्रभु प्रेम में कैसे, फिर वो जब यहाँ यहाँ पे रहते, बाबा 2 बजे उठते थे, ब्रह्मा बाबा, फिर जगदीश भाई जी 2 बजे उठ जाते थे, और फिर बाबा बुलाते थे उनको कभी। तो उसमें लिखते हैं कि दुनिया सुबह सुबह उठकर भगवान को याद करती है, और भगवान किसको याद करते हैं, हमें याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं। और फिर कहते हैं कि वो नहा के जाते थे, कहते थे कैसे कैसे, मतलब आपने क्या बोलते हैं, प्रियतम के सामने मिलने जाना है, बिना नहाए ऐसे कैसे जाएं। तो नहा के सज धज के जैसे तैयार होकर जाते हैं, वैसे वो तैयार होकर रहते थे कि बाबा कब बुलाए, भगवान की कब बुलाहट आ जाए। तो वैसा, तो ये प्रभु प्रेम है जिससे हम कोई यज्ञ को, यज्ञ से जुड़ते हैं। एक्चुअली सब जुड़े हैं, तो एक ही वो एक धागा है जिससे सब जुड़े हैं। सबके संस्कार अलग हैं, सब कहां से हैं, लेकिन एक जो इस स्नेह है, प्रभु प्रेम है, जो सबको बांध दिया है कहीं ना कहीं। कहां कहां से आए हैं, विदेशों से, कहां से कहां से, तो लेकिन ये है। ये तीसरा है दिव्य संगठन। तो यज्ञ क्या है, एक संगठन है, जैसा हमने देखा। कौन सा संगठन है, दिव्य संगठन, इसको और क्या क्या कहते हैं बाबा, संगठन का नाम क्या क्या दिया है, किला और बेहद का परिवार, आज की मुरली में भी कुछ कहा है शायद, ब्राह्मण परिवार, न्यारा प्यारा परिवार, हाँ ब्रह्मा कुमारियों की चाल ही निराली है, अलग है। परिया बनना है, तो परिवार के बारे में कितना, संगठन के बारे में बाबा ने कितनी सारी बातें कही है। फिर कुछ दिन पहले के मुरली में बाबा ने ब्रह्मा की भुजाएं हैं सभी, परिवार क्या है, ब्रह्मा, संगठन क्या है, ब्रह्मा की भुजाएं हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो एक मुरली है, व्यक्त मुरली है, 14th November 2002, इसमें बाबा संगठन के बारे में कहा है, बहुत ही अच्छा वो थोड़ा। ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है, ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवार से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में विजयी, ऐसे नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का हो गया, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है, चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है, परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। फिर सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, क्योंकि इसमें भी वैरायटीज है ना, जैसे बाबा कहते हैं 108 की माला क्यों बनी, 16,000 की माला क्यों बनी, तो क्यों बनी, क्योंकि वैरायटी है, सबके अलग अलग है, लेकिन परिवार है, संगठन है, तब तो चल रहा है ना यज्ञ। यज्ञ बिना संगठन के तो नहीं चलेगा, एक दो लोग से तो यज्ञ होगा नहीं। तो ये सक्सेसफुल चीज, चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता ही तो कहीं जा ही नहीं सकते, सही बात है। फिर नशा भी है ना, कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, सही बात है, ये तो नशा रहता है ना कि हमारा भाई बहुत बड़ा है, देख लेंगे, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक, डायरेक्ट परमात्मा तक है। फिर तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होकर चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यह परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो बाबा परिवार की बहुत महिमा करते हैं, और एक ऐसा लगता भी है जैसे जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, मतलब बाबा यज्ञ से जुड़े हैं, तब से कहीं भी जाओ, पहले फील्ड वर्क था तो जाते ऐसा लगता कि यहां जाना है वहां जाना, अब तो लगता ही नहीं है कहीं जाना, अब तो लगता है अपने ही घर में जाना है, कहीं भी जाओ तो सेंटर मिल ही जाता है, सेंटर मिल गया चले जाओ, तो कुछ लगता ही नहीं कि कहीं हम अलग जाए, जहां भी जाओ अपना ही जैसे ही लगता है। तो एक परिवार है, पूरा विश्व ही परिवार है। कोई पूछता है कि कहां सेंटर मिलेगा, हम बोले जहां दुनिया के कोने में कहीं भी भेज दो सेंटर मिल जाएगा, उसके लिए हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बाबा कहीं पे भी। और कई बार तो क्या होता है पता नहीं होता, लेकिन सेंटर दिख जाता है सामने, ऐसा लगता है बाबा ने पकड़ के वहां पे ले गए, तो कहां जाना है, मिल जाता है आराम से। अभी गैंगटॉक गए थे तो वहां पे ऐसे ही पहली बार गए तो पता ही नहीं था, सेंटर पे गया ही नहीं, दोबारा गया तो पता चला बगल में ही सेंटर है गैंगटॉक में। तो वहाँ पे बहन जी थे तो उन्हें बहुत ही प्यार से पालना भी इतनी अच्छी, सब जगह ही मतलब कहीं पे भी तो कई जगह पे गए सब जगह बाबा, वही कहते हैं ना, कई कहते हैं कि बहन हाँ जहाँ पे है वहीं पे फिर शुरू कर दो। तो नहीं जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये बहन वो बहन, कहीं पे भी जाओ तो एक समान प्यार, तो पता चलता नहीं कि बाबा का प्यार है, क्योंकि सबके संस्कार अलग है लेकिन हमारी पालना तो एक जैसी हो रही है ना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी जाओ सब जगह एक जैसी पालना, तो कौन दे रहा है, और सबके संस्कार तो अलग ही है फिर, लेकिन हमारी पालना तो एक जैसी ही मिल रही है, तो वही है ना, एक ही है ना देने वाला। फिर उसके बाद है छठी पॉइंट है मधुबन। एक तो परिवार हो गया संगठन, फिर है मधुबन जो ये स्थान है, कौन से स्थान पे यज्ञ रचा गया ये मधुबन। मधुबन के बारे में भी आज भी बाबा ने कहा है कुछ, संगम योगी स्वर्ग, उस स्वर्ग से भी महान है ये स्वर्ग। क्यों महान है, क्योंकि वो स्वर्ग जैसे क्या होता है ना, कुछ कोई सुख मिलता है उसका इंतजार, जैसे कहते हैं ना मौत से दर्दनाक होता है मौत का इंतजार, तो सुख से भी अच्छा सुखी होता है सुख का इंतजार। जब कहीं जाना होता है जैसे मधुबन ही आना होता है, तो मधुबन आने से पहले कितने अगर 6 मंथ से इंतजार करते हैं, खुश रहते जाना है जाना है जाना है, आ जाते हैं तो उतनी खुशी नहीं रहती है जितनी आने से पहले रहती है, ये फैक्ट है। तो वही चीज तो वैसे ही है कि हाँ नहीं जाने का दुख होता है ना, फिर जाना है यार अब जाना है अब तो जाना है ऐसा रहता है, तो वैसे ही है। तो वो जो भविष्य का जो सोच के सुख होता है ना वो सबसे ज्यादा सुख, इसलिए बाबा कहती है कि ज्यादा सुखी जीवन है, क्योंकि अभी हम क्या सोच रहे हैं कि सतयुग आने वाला है, सतयुग आएगा तो फिर एक तो उस समय याद भी नहीं रहेगा कि हम सतयुग में मतलब सुखी हैं या फिर, क्योंकि सुख दुख का कुछ पता ही नहीं रहेगा, वो तो है रहेगा ठीक है, लेकिन अभी जो उसका, क्योंकि अभी दुख तो देख रहे हैं ना दुनिया में और देख रहे हैं कि सुख आने वाला है, तो उसका सोच के कितनी खुशी होती है। तो मधुबन के बारे में, मधुबन के बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे शोकेस और शीश महल और टीवी स्टेशन, लाइट हाउस, माइट हाउस, बेहद का घर है बहुत बड़ी लिस्ट है। तो हाँ तो बाबा क्या कहते हैं, महान भूमि है, बेहद का घर है, और साकार बाबा की कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, उन्हें यहाँ पे रह के कर्म करके दिखाया है, इसको एग्जाम्पल बनाया है, इस भूमि को संपूर्ण बनने की भूमि है, महान तीर्थ है। हाँ सब महान मधुबन के बारे में, तीर्थ पे बाबा कितनी मुरलियां चलाते, चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तो ऐसे मूर्तिकला का एयरपोर्ट, लैंडिंग का भी एयरपोर्ट है। एक मुरली है 6 दिसंबर 1969 की मुरली में बाबा कहते हैं, इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पांव नहीं रख सकता, यहाँ पे कोई भी पांव नहीं रख सकता, हम यहाँ पे हैं इसका मतलब ही है कि हमने बहुत 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 पुण्य किया है, ऐसे वैसे नहीं है कोई आके बोले ऐसे ऐसे वैसे नहीं है, देख लो जाके भगवान क्या कहते हैं हमारे बारे में, तो नशा तो है ही। फिर मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर और कोई पांव नहीं रख सकता, बाबा सीधे सीधे कहे कोई अपना शीश भी उतार के दे दे फिर भी इस भूमि पे नहीं आ सकता। आप सभी को बाप दादा समझाते हैं कि यह स्नेह की लकीर है, जिस स्नेह के घेराव के अंदर बाप दादा निवास करते हैं इसके अंदर कोई आ नहीं सकते, चाहे भल अपना शीश भी उतार कर रखे। तो कितनी बड़ी बात है कि इस भूमि पर कोई ऐसा आ ही नहीं सकता, यही बात है, तो बहुत बड़ा भाग्य है। हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने क्या किया कि हमको भगवान मिल गया, ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा तोप किया नहीं ये किया, लेकिन भगवान कैसे मिल गए, लोग क्या क्या नहीं करते हैं, दुनिया छोड़ कितने कष्ट करते हैं, हठ योग करते हैं, क्या क्या करते, देख के ऐसा लगता है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, खासकर जैन धर्म का उनका देखते हैं तो बापरे वो तो इतना ही खतरनाक होता है। मैं सबसे पहले कॉलेज में था तब तो कुछ उतना भक्ति का भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरा एक फ्रेंड जैन था तो उसने बोला कि उसकी सिस्टर का रिक्शा होने वाला था, तो बोला था दीक्षा होने वाला है। मैंने दीक्षा क्या होता है पता नहीं था कुछ भी। उसने बताया जब प्रोसेस बताया कि क्या करते कैसे बाल निकालते कैसे क्या करते हैं, उस समय पता नहीं जो भी था उस समय थोड़ा सा लगा कि ये चीज कैसे हो सकता है पॉसिबल, इतना कैसे परिवार को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा दुख लगता था परिवार को छोड़ के चले जाते हैं और एक अलग ही मतलब फिर मिलते नहीं है कभी, वो अपने फैमिली से बात भी नहीं करते हैं और किए भी तो कैसे अनजान की तरह कभी सामने से दिख गए तो नहीं तो, तो कितना कष्ट सहते हैं। तो वैसा ही तो हाँ, और हम इतने कैसे क्या कर लिए कि तो सस्ते में मिल गए तो वो चीज है। तो इसलिए इस चीज को जब हम समझते हैं तो अपने आप ही इस यज्ञ से स्नेह हो जाता है। मेहनत नहीं करना हाँ कष्ट नहीं हाँ, तो इसलिए हम तो बाबा उतार रहे हैं ना, हमको मेहनत नहीं करना। बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त हो जाओ। हाँ इसलिए तो बाबा आराम से बाल तो निकलने ही है, वो तो शरीर को तो जलना है ही, वो पहले जला रहे हमको भी जलना है ऐसा नहीं है। कष्ट तो होगा ही, बीमारी हो रही तो कष्ट तो हो ही रहा है और वो भी कष्ट कर रहे तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन हमारा कैसा है कि भगवान से जो प्रेम है ना तो वो महसूसता नहीं होती है। बाकी सब ढूंढ रहे ना हमको मिल गए, लेकिन हाँ हम कितना महसूस करते वो भी डिपेंड करता है। अब हमको कितना उस पर निश्चय है, नहीं तो ऐसे ही बस हाँ चलो ठीक है तो कष्ट तो होगा फिर। तो अगर भगवान से प्रेम है तो कष्ट रहेगा नहीं। हाँ हिंसा है तो हिंसा ही है ना, वो भी हिंसा है अपने शरीर को भी। शरीर किसका है? शरीर मेरा है, मैं शरीर तो नहीं हूं ना, तो शरीर तो मेरे से अलग है। तो मैं किसी भी चीज को अगर कष्ट दे रहा हूं, इवन बाबा कहते धरती को भी तुमको कष्ट नहीं देना है, प्रकृति को भी तुमको ये करना, शरीर तो प्रकृति है ना, तो इसको कष्ट देना मतलब क्या हुआ? तो नुकसान ही कर रहे हैं ना। तो बहुत फिर इसके बाद है सातवां पॉइंट है युग, कौन सी युग में ये यज्ञ होता है? तो संगम युग, गीता युग बाबा कहते हैं, संगम युग कहते हैं, गीता युग कहते हैं कि यज्ञ जब स्थापना होती है तो कलयुग नहीं रह जाता है फिर हमारे लिए। तो आज के मूल्य में बाबा ने कहा ना कि आपके लिए सब नया है, वही कहते हैं इनकी चाली निराली है, अलग है, क्योंकि सब अलग हो जाता है हमारे लिए। कोई कहते हैं कि हाँ ये तो अलग चलते हैं, हाँ अलग ही है ना, तभी तो अलग है, यूनिक है। अगर सेम जैसा रहता तो फिर क्या फर्क पड़ता, भगवान के आने का क्या कोई मतलब ही नहीं रहता ना। वो भी दुनिया वालों की तरह ही वही शास्त्र सुनाते, हाँ अल्लाह लोग हैं, हम अल्लाह लोग हैं, तो इसलिए अलग तो है ही, ऑब्वियसली अलग है क्योंकि आज नहीं बोला पहले बोलते रहते। आज चाली निराली कहा, पड़िया पड़ी कहा, ऐसा कहा। संगम युग के बारे में एक मुरली है 15/3/1972 की, यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। ये भी है संगम युग, ऊपर से ऊपर जाने का भी है और नीचे जाने का भी है। भगवान का बनने के बाद हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके अनुसार, लेकिन यह संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हैं, जितना चाहो उतना बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है और कलम दे दिया है हमारे हाथ में, श्रेष्ठ कलम दे दिया है। तो फिर यह बाप साथ नहीं रहेगा ना यह प्राप्ति रहेगी। तो पूरे कल्प का भाग्य बनाने के लिए हमारे पास यही समय है, संगम युग, यही यज्ञ का जो समय है इसी समय पर हमें भाग्य बनाना है और प्राप्ति भी अभी ही होनी है। अभी अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन स्मृति में रखना है, ऐसा बाबा कहते हैं। तो यही समय है और अभी मतलब संगम युग मतलब ये नहीं कि पूरा 100 साल का है, तो 100 साल किसको मिला है? जो अभी अभी आए हम, अभी अभी आए हैं तो हमको कितना साल मिला? बाकी के लिए भले 80 साल होगा, हमारे लिए तो 1 साल ही है। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन अभी जैसे प्रेजेंट ही देखते हैं ना नॉर्मली, तो अभी तो देखा जाए तो वही है, तो बोल नहीं सकते। तो ऐसा है तो स्लोगन अभी 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 तो अब तक कितना किया, अभी अगले सेकंड क्या हो जाए कौन जानता है, ये भी जन्म खत्म हो जाए। तो इसलिए आजकल देख रही है कैसी कैसी बीमारियां आ रही है। कल एक वीडियो आया था चाइना का कि उनको घरों में बंद कर दिए हैं, वो जो जिनको वायरस हो गया घर से निकल ही नहीं पा रहे, अंदर से चिल्ला रहे हैं, हाँ सूट भी कर रहे, पूरा पैक कर दिए, वो लॉक कर दिए, बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो कैसी जिंदगी है? तो ये भी तो एक मतलब कर्म भोग जो भी कही, तो कौन जानता है कब क्या हो जाए। इसलिए बाबा की याद में जितना जितना जब तक है तब तक कर सकते हैं। बाबा कल दो दिन एक दिन पहले की मुरली में ही थी ना कि अपने जीवन से तंग नहीं आना है, जीवन से तंग नहीं आना है, क्योंकि हाँ है तभी तो याद कर रहे हैं। फिर है यह अब इस यज्ञ में क्या होता है, महाभारत लड़ाई और पांडव। तो ये क्या है, यज्ञ क्या है, एक लड़ाई भी है, महाभारत की लड़ाई और पांडव। पांडव कौन है और कौरव कौन है? अच्छा एक तो वो कहते हैं और हम ब्राह्मण फैमिली में भी पांडव कौरव कौन है इधर पे भी है। एक्चुअली देखा जाए तो कौरव और पांडव इधर ही हैं। कैसे? क्योंकि कौरव को भी ज्ञान था, दुर्योधन को भी ज्ञान था कि क्या सही है, धर्म का ज्ञान था। जिसको ज्ञान है ही नहीं उसका तो मतलब ठीक है चलो, तू बोलेगा कि मेरे पास ज्ञान ही नहीं था, लेकिन जिसको ज्ञान है और फिर नहीं चल रहा है वो बोला मेरे पास कैपेसिटी नहीं है चलने की। कौरव तो एक्चुअली में वो हुआ ज्ञान होने के बावजूद भी, तो ज्ञान में आने के बाद नहीं कर पाए। एक्चुअली में कौरव और पांडव उसी में है कि कितना हम बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं और कितना हाफ कास्ट ब्राह्मण जो बोलते वो कौरव हुए तो एक्चुअली में क्योंकि कौरव के एक ही कुल के थे ना, कौरव पांडव एक ही कुल के थे ना, अलग अलग कुल नहीं थे, एक ही कुल के थे। और देखा जाए तो जब महाभारत में पांडव की भी गलती पूरी बराबर थी, इवन कौरव से ज्यादा थी, क्योंकि कहते हैं ना कि पापियों के पाप से ज्यादा पाप होता है क्या, सन्यासियों का मौन। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो क्या हुआ, पांडव तो वहीं पे थे, सारी शक्तियां उनके पास थी, लेकिन अपने वही बने बनाए जो उन्हें अपनी धारणाएं जो भी प्रतिज्ञाएं की थी उसके लिए उनने नहीं कुछ किया, तो ज्यादा तो पाप तो उनका हुआ। कौरव तो कैसा देखा जाए तो ठीक है वो चलो पापी ही है तो पाप कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं थे, ये कर सकते थे, तो जो भी थी तो इसलिए इनका ज्यादा है। लेकिन फिर भी इनको भगवान ने साथ क्यों दिया, क्योंकि बाद में भी उनने भगवान की राह पे चले। और जब परमात्मा ने उनको समझाया, उनकी गलती का एहसास दिलाया, जब भगवान ने उनकी गलती का एहसास दिलाया तो उस समय उसके बाद से उन्होंने गलती रिपीट नहीं की, वो संभल गए। पहले गलती की लेकिन जब उनकी गलती का एहसास हुआ तब संभल गए। तो वैसे ही जब परमात्मा आकर हमको ज्ञान सुनाते हैं कि तुम अभी चलो भीतर नर्क में हो, अभी निकलो, अब एक बार जब समझ गए, समझने के बाद अगर हम उसी राह पे चल रहे हैं, श्रीमत पे फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम पांडव हैं एक्चुअली में, और नहीं तो फिर हम कौरव ही हैं। क्योंकि ज्ञान तो सबको जैसे दिखाया है कि दुर्योधन को कितनी बार समझाया जाके, कौरव को, सबको, भीष्म पितामह सबको समझाया ना जाके कितनी बार, लेकिन फिर भी जो नहीं चल पाए वो नहीं, कर्ण की भी कहानी है कितनी बार समझाए, लेकिन तो वैसे ही है। तो कौरव भी इधर ही है, अगर वो कौरव तो है ही लेकिन इधर पे भी है। तो ये महाभारत लड़ाई भी है, यज्ञ। फिर है पालना और प्यार। इस यज्ञ में क्या है, एक सबसे जो पालना और प्यार यूनिक है, इतनी पालना और कहीं नहीं मिल सकती, कोई दे ही नहीं सकता है। कोई कितना, अब कोई बोलता है कि हाँ हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, कितना कर सकता है, कितना देर बात ही कितना देर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन परमात्मा बाबा कितनी देर बात कर सकते हैं, 24 कितनी पालना वही पालना, जैसे स्थूल पालना, तीनों तरह की पालना, सिर्फ एक ही पालना नहीं, स्थूल सूक्ष्म सब। तो परमात्मा की पालना है ना, वो दिलवा रहा है, स्थूल पालना भी कौन दिलवा रहा है, वो दिलवा रहा है ना, सूक्ष्म पालना सब तो वही दिलवा रहा है ना। हम कहीं पे भी जाते हैं तो जो बहनों का जो सब कुछ जो मिलता है स्थूल में, तो वो कौन दिला रहा है, वो वही दिला रहा है। तो उसका पालना और प्यार तो कहीं नहीं मिल सकता, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता है। उसका एक सुख और निस्वार्थ है, वो कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, उसका सबसे बड़ा चीज नहीं। तो बाकी दुनिया में कोई कितना भी कुछ करे लेकिन स्वार्थ रहता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है, कोई कितना भी भले कहे लेकिन रहता है। तो वो निस्वार्थ है, जैसे यज्ञ का था ना, यज्ञ का अर्थ क्या होता है कि निस्वार्थ भाव हो। तो भगवान आते हैं तो क्या, निस्वार्थ भाव से हमारी पालना करते हैं। तो हमें भी दूसरों को ज्ञान सुनाना निस्वार्थ भाव से, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हम इनको ज्ञान सुनाएं तो ये कुछ करे या फिर ये बहुत आगे नहीं मतलब ये करे कुछ सेंटर पे मतलब बहुत सहयोग दे। ठीक है हमको ज्ञान सुनाने है, वो देना होगा तो देगा, वो तो बाबा का काम है। तो वैसा फिर हम इसके बारे में भी एक मुरली बहुत ही प्यारी है, भगवान को भोलापन प्यारा है, मुरली है 28 फरवरी 84। आज भोलेनाथ बाप अपने भोले बच्चों से बाप का सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। बाबा कौन है? भोलानाथ है ना, और हम बच्चे कौन है? भोले। कहते हैं ना बाकी बहुत सीधे साधे हो ना, इससे लोग मजाक उड़ा देते हैं ऐसे, मतलब बाहर में या फिर कॉलेज वगैरह में भी पता है ना, थोड़े से सीधे रहते तो चिढ़ाते हैं बहुत लोग, तो पहले लगता था कि हाँ चिढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ सही में थोड़े ज्यादा नहीं बोलते हैं। अब जैसे कोई एकदम हर बात में होता है ना कि वैसा नहीं जा रहे हैं, फिर कोई ज्यादा मजाक कर रहे तो हम भी नहीं कर रहे वैसे, तो क्या समझते सीधे हैं तो थोड़ा सा ले लेते हैं चलो इनको, लेकिन अब लगता है कि चलो अच्छा हुआ ना सीधे थे, ज्यादा समझदार नहीं थे, सीधे थे तो अच्छा हुआ ना, भगवान मिल गया हमको, तो सीधा रहना ही ज्यादा अच्छा, भोला रहना ही अच्छा है। क्योंकि ज्यादा आजकल बोलते हैं ज्यादा भोला नहीं बनो, नहीं तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, चीटियां लग जाएगी। लेकिन बाबा को तो वही पसंद है, तो भाई हमको तो और भोला ही बनना है। देखते हैं ना बचपन में बहुत भोले थे, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा चेंज, खुद को चेंज किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं रहना है, चेंज किया, फिर जब ज्ञान मिला तो फिर से रिवर्स किया। तो ऐसा लगता था बचपन वाला अच्छा था ना, बीच में बिगड़े, और तब जब उस कॉलेज में थे बाकियों का देख देख के, इवन जैसे बातें करना, गाली से बातें करना, तो उसको भी सीखना पड़ता था, कितना समय लगा उसको सीखने के लिए कि भाई उन लोगों से कैसे मिलजुल के बातें करना है, और अब छोड़ने के लिए फिर सीखो। बचपन से क्योंकि ऐसे संस्कार नहीं थे, अब कॉलेज में जाने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं, उनके सामने अगर नहीं बात करो सीधे सिंपल बात करो, कहेंगे गांव से आया है कि कुछ आता ही नहीं है, तो फिर सीखो नहीं, हमको भी आता है भाई, तुमको ऐसे नहीं बोला आता है, वो सीखना पड़ता है एक्चुअली। और फिर उसके बाद जब बाबा ज्ञान मिला, नहीं ये गलत है यार, जब छोड़ना है, ये था कि कुछ दिन का पीरियड था, जल्दी तो छूट गया, फिर जल्दी टाइम नहीं लगा। तो उसके फिर बाबा कहते भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं, भोले अर्थात जो सदा सत्य स्वभाव शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न और सफाई। भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं, भोले अर्थात जो सदा सत्य स्वभाव सरल स्वभाव शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न और सफाई। ऐसे भोले बच्चे भोलेनाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते हैं। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की, और बाप अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल पावरफुल उतना ही भोलापन। अब सिर्फ भोला इसका मतलब ही नहीं, बाकी कुछ आता ही नहीं है। बाबा ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल पावरफुल फिर भोलापन ऐड किया साथ में, भोलापन मतलब बाकी कुछ जाना ही नहीं है, अपना नॉलेज जो है, जैसे बाबा भी कहते हैं नॉलेजफुल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबके मन की बात जानते हैं, वो नॉलेजफुल है तो बाकी सारी आदि अंधे जानते हैं, और हमको बताते तो हम भी नॉलेजफुल बन जाते हैं। आज इसीलिए बाबा भोलापन के बारे में बहुत कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं भगवान को भोलापन प्यारा है, ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, हम सभी जानते हैं, जो भगवान को मोह लिया अपना बना लिया। शब्द कितने प्यारे लगते हैं ना सुन के, कि मोह लिया, भगवान को मोह लिया, ऐसे जैसे लगता है कि तुम पकड़ लो। तो बहुत ही स्वीट बाबा की जो वाणी है एकदम स्वीट है, जितना थोड़ा कभी कड़क भी रहता है कभी इतना स्वीट रहता है कि एकदम दिल पिघल जाता है। फिर है दसवां है पवित्रता, इस यज्ञ की सबसे नींव जो है आधार और आकर्षण, आधार भी है और आकर्षण भी है, क्योंकि पवित्रता बाबा आते हैं तो सबसे पहले उसी के चक्कर में बहुत लफड़े हुए, शुरुआत में यज्ञ की जो सबसे ज्यादा लफड़े हुए तो पवित्रता को लेके ही हुए, लेकिन आधार वही था। तो बाबा को कई कहते थे बाबा सब ठीक है ये हटा दो ना, हमारे लौकिक में भी कहते सब ठीक है आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन शादी करना चाहिए ये गलत है, तो सब अच्छा ज्ञान तो इतना अच्छा है लेकिन शादी करना चाहिए ना, वो भी देखना पड़ेगा ऐसा होते हैं, वही तो मेन है ज्ञान, मतलब जो ज्ञान है वही तो है, हमको पवित्र रहना है तभी तो पवित्र दुनिया का स्थापन करेंगे। ज्ञान तो दुनिया में बहुत लोग सुना रहे, दुनिया का ज्ञान देखा जाए तो ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन मैंने चलना, ज्ञान पर हम चल कितना रहे हैं, ज्ञान को धारण कितना किया है, ज्ञान को धारण ही नहीं किया तो सिर्फ ज्ञान सुनने से कोई फायदा नहीं है। पवित्रता के बारे में बाबा ने एक मुरली में चार लाइनें कही हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल है। 6 जनवरी 1982 पवित्र संकल्प क्या है? बुद्धि का भोजन, और पवित्र दृष्टि आंखों की रोशनी। और पवित्र नहीं तीसरा है पवित्र कर्म। पवित्र कर्म है ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा और संबंध संपर्क है पवित्र संबंध संपर्क है विशेष मर्यादा ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो ये सदा अपने हमको बुद्धि में रखना है कि पवित्रता बहुत ही मतलब यज्ञ का आधार है। तो ये भी जब यज्ञ से जुड़ना है तो जब पवित्रता आएगी तो ऑटोमेटिक ये भी है कि यज्ञ से हम जुड़ते जाते हैं अंदर में सफाई रहेगी ना सच्चाई सफाई। बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लाइन क्लियर दिल की सफाई और बुद्धि की लाइन क्लियर दो चीज है तो हम ऑटोमेटिक बाबा परमात्मा से जुड़ बाबा से जुड़ गए तो फिर यज्ञ से जुड़ गए तो सबसे जुड़ने के लिए तो वो चीजें चाहिए तो वो नहीं रहेगा तो फिर अपने आप ही हम साइड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर है अमृत वेला यज्ञ का सबसे बेसिक फाउंडेशन जब बनाने का जो समय होता है। यज्ञ में क्या करते हैं सुबह सुबह हवन देता है ना सबसे पहले उसको थोड़ा सा हल्का सा डालते हैं ना ताकि आग जले फिर उसके बाद से बाकी सब डालते हैं तो वो अमृत वेला है हमको न्यू मजबूत करने के लिए अपना। अमृत वेला के बारे में बाबा मुरलियों में भी बहुत सारी बातें कहते हैं और अभी हमारी सीरीज भी चल रही है इंग्लिश वाली तो अमृत वेला पे तो अमृत वेला बाबा एक मुरली में कहते हैं 26/4/1977 रोज अमृत वेला बाप वरदान देते हैं अगर रोज वरदान लेते रहे तो कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। वरदान लेने में सिर्फ पात्र बनना जो भी चाहिए अमृत वेला सब मिल सकता है जितना चाहिए सब मिलेगा। बाबा ने खुला खजाना छोड़ दिया है अमृत वेला के लिए। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है और जैसे कितना भी बड़ा आदमी हो लेकिन फिर भी अपने फैमिली के लिए विशेष टाइम जरूर रखते हैं वैसे बाबा भी सब दुनिया बाबा तो सब दुनिया के लिए देखते हैं लेकिन ब्राह्मणों के लिए विशेष समय निकालते हैं अमृत वेला। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है फिर विश्व की आत्माओं प्रति लेकिन पहला चांस किसका है हमारा है। तो अमृत वेला जब योग अच्छा रहता है तो अपने आप ही दिन अच्छा जाता है तो दिन भर अपने किसी से चिड़चिड़ापन होगा ही नहीं तो यज्ञ से प्यार स्वतः ही रहेगा। यज्ञ में रहे कहीं पर भी यज्ञ से जुड़े रहने के लिए तो चाहिए ना योग हमारा अच्छा रहेगा तो सकाश दे सकते हैं कर सकते हैं सहयोग दे सकते हैं। फिर है लक्ष्य कि हमारा लक्ष्य क्या है क्या लक्ष्य है और वो तो लास्ट मतलब लक्ष्य है लेकिन लक्ष्य में भी होता है ना जैसे टारगेट बनाते हैं जैसे अगर एक साल बाद एग्जाम है तो एक तो मैंने के एग्जाम में पास होना है फुल पास लेकिन हाँ लेकिन उसका टारगेट बनाते हैं ना कि वन मंथ में हाँ बाप समान वैसे तो हमारी कुछ एक टारगेट है ना कि अभी इतना बनना है जैसे बाबा ने अभी जो मुरली चली थी नीचे मधुबन में कहा था ना कि फिक्स करना है कब तक और बताना है फिर बाबा को फाइनल करना है फाइल में नहीं डालना हाँ तो डेट फिक्स करनी है। तो वैसे कुछ कुछ हम क्या होता है एक ही बार लक्ष्मी नारायण तो एकदम टारगेट कर लेंगे तो वो होगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाएगा ना तो धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ कुछ बीच बीच का करेंगे ना कि ये चीज कर सकते हैं तो कुछ कुछ ऐसे किया वैसे कर सकते हैं। हाँ तो अभी जैसे अभी सामने का टारगेट है कि हाँ धारणा कि अभी जो धारणा है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं वो टारगेट करना तो वैसा है बाप समान फिर लक्ष्मी नारायण तो टारगेट है ही फरिश्ता बनना कर्मातीत बनना। फिर एक मुरली थी 11 June 1970 की विश्वपति बनने की सामग्री तो उसमें बाबा लेकर आए हैं क्या ताज तख्त और तिलक आज भी कहा ताज तिलक बारे में और उसमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा त्याग तपस्या और सेवा। त्याग से क्या होगा त्याग से ताज मिलेगा और तिलक तपस्या से तिलक और सेवा से तख्त तख्त नसीब तो अभी सेवा करेंगे तो अभी भी स्वराज अधिकार मिलेगा और बाद में विश्वराज अधिकार तो मिलेगा ही। फिर है वैराग्य वैराग्य रहता है तो भगवान से प्यार तभी आएगा जब तक स्थूल वैराग्य नहीं होगा और हम कभी कभी क्या कहते हैं जैसे बेहद का वैराग्य कहते हैं हद का वैराग्य को ना थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखते हैं हद का वैराग्य बेहद के अंदर ही तो हद आ गया जब एक डॉट है और बड़ा राउंड हमने किया तो राउंड के अंदर तो डॉट आ ही गया ना तो हद का वैराग्य तो आ गया लेकिन हद का वैराग्य क्या है तो पता हो पहले। अब हद का वैराग्य थोड़ी घर छोड़ना हद का वैराग्य नहीं तो बेहद का वैराग्य में हद का वैराग्य आ गया उसके अंदर ही है तो हद का बाबा तो बेहद कहते हैं मतलब हद के साथ तुमको बाकी सब भी बाकी लोग सिर्फ हद करते हैं हमको हद तो करना ही है बाकी बेहद भी करना है बेहद मतलब सब कुछ करना है हद पार कर गए इसका मतलब नहीं कि हद को छोड़ के सिर्फ बेहद ये तो कि बेहद का है ना हमारा तो बाकी हद वाला चलने दो तो सभी चल रहा है फिर होता है ना ऐसा हम ये चीज वही कि बेहद का है ना, तो बाकी समझ में आता है, थोड़ा ढीले हो जाते फिर, लेकिन हद तो पहले आएगा ही, और फिर बेहद में हद अपने आप ही आ गया। लेकिन हद में हमको क्या छोड़ना है, कौन सा वैराग्य छोड़ना है, अपने संस्कारों का, अपने स्वभाव का, जो हमारे आदतें हैं पुराने, वो सब चीजों का वैराग्य। गड़बड़ छोड़ देने से थोड़ी कहीं ना जाएंगे, तो सब जगह तो कोई ना कोई मिलेगा। बाबा ने कहा ना, परिवार को छोड़कर कहां जाएंगे, तो छोड़कर संसार छोड़कर तो नहीं जा सकते, संसार में ही रहेंगे, कोई भी आत्मा से मिलेंगे, कहीं पे भी अटैचमेंट हो गया तो वैराग्य तो नहीं हुआ। अब मैं लौकिक छोड़ के और कहीं और जाके किसी और, नॉर्मल भी तो लोग शादी करके घर बार छोड़ ही देते हैं, तो क्या वैराग्य से छोड़ते हैं क्या? शादी करके फॉरेन गए, वहीं पे सेटल हो गए, तो घर कभी आए ही नहीं, माँ बाप को कभी देखा ही नहीं, तो क्या वैराग्य हो गया? नहीं, वो तो उनकी स्वार्थ हो गया, निक्षा। यस, तो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं है, तो हमारा अट्रैक्शन किससे है? सिर्फ बाप से होना चाहिए, भगवान से होना चाहिए, और कहीं नहीं। उससे राग हो, बाकी सबसे वैराग्य। फिर वैराग्य के बारे में एक बाबा ने कहा है, 25 से 10 मिनट है, 5 मिनट ठीक है। वैराग्य के बारे में 25 जून 1970 की मुरली है, जिसमें बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति की पालना तो करनी ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है या भूल जाता है, आधी बात याद रहती है आधी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमको पूरी बात याद रखनी है कि बेहद के साथ साथ हद सब। वैराग्य मतलब हमारे अंदर का वैराग्य है, बाहर दिखावटी वैराग्य नहीं है। तो फिर दो पॉइंट्स और हैं, एक है सेवा और ईश्वरीय बंधन, कि सेवा जब हम करते हैं तो भी हमारे यज्ञ से स्नेह जुड़ता है, और फिर ईश्वरीय बंधन। बाबा कहते हैं कि जितना अपने को सेवा में बांधो तो बाकी बंधन छूटते जाएंगे, बाकी बंधन जो भी बंधन है जिससे हम हमको नहीं चाहिए, वो बंधन जैसे लग रहा है तो उसको छोड़ना है। तो हमको ये नहीं, बाबा कोई कहते हैं कि ये बंधन छूटे तो मैं सेवा करूं। इसमें है एक मुरली है 7 जून 1970 की, तो उसमें है कि कहते हैं कि मैं बंधन छोड़ू तो सेवा में आऊं। बाबा कहते हैं तुम सेवा में आ जाओ, सेवा में लग जाओ, बंधन रहते हुए सेवा में लग जाओ, बंधन अपने आप ही कट जाएंगे, छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात सही है। फिर है लास्ट है विघ्न। अब यज्ञ है तो विघ्न तो पड़ेंगे, राक्षस तो क्या डालते हैं ना, जो स्थूल यज्ञ होता है उसमें वो डाल देते कुछ भी कि एकदम इनका यज्ञ अशुद्ध हो जाए, तो वो भी आता है विघ्न, और कई तरह के, अंदर से भी आता है बाहर से भी, हमारे संस्कारों का भी आता है और बाहरी से भी आता है। तो उसके लिए बाबा एक मुरली है 18 जनवरी 1979, उसमें बाबा कहते अंगद समान अचल बनो। और पेपर आना मतलब क्या समझना है कि एक क्लास आगे बढ़ गए। ये चीज बहुत अच्छा लगा कि पहले क्या होता था कि कुछ गलती हो जाती है वही सोचने में रह जाते थे, अब उसी में फंसे हैं। बाबा कहते हैं उसको छोड़ो, एक ही सोचना है कि हाँ मेरी गलती थी या फिर मैंने जानबूझ के सोचा किया क्या नहीं किया, तो मैं नहीं हूं वो, मेरा वो स्वरूप ही नहीं। कुछ दिन के पहले की मुरली में चली थी कि आपका वो, आप कहते हैं कि मेरे स्वभाव संस्कार, आपके स्वभाव संस्कार तो है ही नहीं, आदि अनादि स्वरूप आपका है, ये तो किसके है, माया के है या फिर हमारे नहीं है वो, हमारे तो हम कहते हैं ना मेरे स्वभाव संस्कार से, मेरे तो है ही नहीं हो, फिर जो है ही नहीं उसका क्यों सोचना, जो भी है लेकिन सोचने से छोड़ना ही है, हमने उसको पकड़ा है ना, उसको ले ली। कभी कोई कहते छोड़ो तो छूटे, बाबा कहते हैं ना, तो एक्चुअली में छोड़ो तो छूटे क्योंकि हम ही उसको पकड़ लेते हैं, अच्छा क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों ऐसा कर दिया, अब हो गया तो हो गया, छोड़ो तो गलती से हो गई। तो वैसे ये 15 पॉइंट्स से कुछ, जिससे क्या है कि भगवान और यज्ञ से प्यार और बढ़ेगा। और ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। सृष्टि कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।